أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الكريم والإمام الحليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. موضوع گفتگو سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری میں ابوا میں ہوئی، جو کہ مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ بنت وہب کی قبر یہیں ہے. امام کے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور والدہ محترمہ جناب حمیدہ ہیں، جو کہ نیک خوئی اور تقوی میں بلند درجے پر تھیں، بلند مرتبہ اور عظیم ترین افراد میں سے تھیں. جناب عباس قمی کہتے ہیں کہ جو کچھ میرے لیے بعض روایات سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ محترمہ اتنی فقیہ اور احکام اور مسائل کو جاننے والی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواتین کو حکم دیتے تھے کہ مسائل اور احکام دین کے لیے جناب حمیدہ سے رجوع کریں. جب حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو بہترین خلق خدا ہے، اور حمیدہ نے مجھے فرزند سے متعلق چند امور کی خبر دی ہے جن پر میں حمیدہ سے زیادہ آگاہ ہوں. یہ سن کر جناب ابو بصیر نے امام سے عرض کی کہ آپ پہ قربان جاؤں، جناب حمیدہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ حمیدہ نے بتایا ہے کہ جب وہ مولود مبارک دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیا اور سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حمیدہ سے فرمایا کہ رسول اور ہر امام کی ولادت کی علامت ایسے ہی ہے. امام نے دعوت کا اہتمام کیا جو 3 روز تک جاری رہی، 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا. شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے یعقوب سراج سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنے فرزند کے سرہانے کھڑے ہیں اور اپنے فرزند سے دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ امام فارغ ہوئے تو میں امام کے پاس آیا. امام نے مجھ سے فرمایا اپنے مولا کو سلام کرو. میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے فصیح زبان میں مجھے سلام کا جواب دیا جبکہ آپ ابھی گہوارے میں تھے. امام کا اسم مبارک موسیٰ اور مشہور کنیت ابوالحسن اور ابا ابراہیم ہے، اور القابات کاظم، صابر، صالح، امین ہیں. مشہور لقب کاظم ہے، یعنی غصے کو پی جانے والے، کیونکہ آپ نے دشمنوں سے بہت تکالیف اٹھائی لیکن بد دعا نہیں کی، آپ غصے کو پی جاتے اور جو بھی مصیبت درپیش ہوتی اور ظالموں کی طرف سے آپ پر جو ظلم ہوتا اس پر صبر فرماتے تھے. اہل سنت اور شیعہ علماء نے امام کے بارے میں جو تحریر کیا اس کو بیان کریں گے. اہل سنت کے عالم ہیں علامہ ابن جوزی، یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ امام کا لقب اس لیے کاظم ہوا کہ جب کسی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس کو اتنا مال عطا فرماتے کہ وہ سیر ہو جاتا تھا. اور اہل سنت سے ہی تعلق رکھنے والے ابن عسیر نے کہا کہ آپ کو کاظم کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ ہر اس شخص سے نیکی کرتے جو آپ سے برائی کرتا. آپ کے اصحاب تقیے کی وجہ سے کبھی آپ کو عبد صالح، کبھی عالم یا فقیہ سے تعبیر کرتے تھے. اور شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابوالحسن اپنے زمانے کے عابد ترین، فقی ترین، سخی ترین اور معزز ترین انسان تھے. شیخ طبریسی لکھتے ہیں کہ آپ کتاب خدا کے حافظ ترین انسان تھے، اور اہل مدینہ آپ کو عبادت الہی کے سلسلے میں کوشاں لوگوں کی زینت کہا کرتے تھے. اہل سنت کے عالم علامہ ابن ابی الحدید امام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ فقاہت، دیانت، عبادت، حلم و صبر کا مجموعہ تھے. علم الانساب کے مشہور ماہر یحییٰ ابن حسن ابن جعفر نے امام کے بارے میں لکھا کہ मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम अपनी इबादत और सख्त कोशिश की वजह से अब्दे सोहले कहलाते थे। ख़तीब बगदादी, जिनका शुमार अहले सुन्नत के काबिले एतमाद और बुज़ुर्ग तरीन कदीम मौर्रखीन में होता है, कहते हैं कि मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम को शिद्दत इबादत, कोशिश और इज्तिहाद की वजह से अब्दे सोहले कहते थे। कमालुद्दीन मोहम्मद इब्ने तलहा शाफ़ी ने कहा कि वो इमाम है बड़ी कदर व मंजिलत वाले, अजीम शान, कसीर तहज्जुद, अतात खुदा में ज़्यादा जद्दोजहद करने वाले, इबादात के साथ मशहूर और अतात पर पाबंद, करामात के साथ मशहूर, सारी रात सजदा व क़याम में गुजार देने वाले, दिन को सदका देने और रोज़े में बसर करने वाले, बहुत ज़्यादा इल्म वाले और तकसीर करने वालों के जुर्म से दरगुजर करने के सबब उन्हें काजिम कहा गया। जो आपसे बुराई करता आप उससे अच्छाई करते, उसे अच्छाई और नेकी की जज़ा देते, और जो आपसे बुराई करता उसे माफ़ करते, और ज़्यादा इबादात की वजह से उनका नाम अब्दे सोले हो गया और इराक़ में बाबुल हवाइज इलल्लाह के लक़ब से मशहूर हैं, क्योंकि जो शख्स आपसे तवस्सुल करता है वो अपनी हाजत पा लेता है। उनकी करामात पर अक्लें हैरान हैं। इमाम अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा आबिद और तमाम लोगों से ज़्यादा गिरामी कदर थे। रिवायत है कि आप रात के वक्त नवाफिल के लिए खड़े होते तो नमाज सुबह तक मुसलसल नमाज पढ़ते रहते। जब सुबह की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक तस्बीहात पढ़ते रहते, फिर सजदा इलाही में जाते और मुसलसल सजदा और खुदा की हम्द करते रहते। करीब जवाल तक सर मुबारक नहीं उठाते थे और ये दुआ बहुत पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकर राहता इंदल मौत वल अफ़्वा इंदल हिसाब, यानी ए अल्लाह, मैं मौत के वक्त राहत और हिसाब के वक्त माफ़ी का ख्वास्तकार हूँ। इमाम खौफ खुदा से इतना गिरिया करते कि रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। आप सबसे ज़्यादा फ़कीह और सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान थे, और आपकी आवाज़ कुरान पाक की तिलावत में सबसे ज़्यादा उम्दा थी। हुस्न व मलाल के साथ कुरान की तिलावत करते, यहाँ तक कि जो शख्स आपकी तिलावत सुनता तो गिरिया करने लगता। खौफ खुदा से आपको गश आ जाता और मदीने के लोग आपको ज़ैनुल मुज्तहिदीन कहते। इमाम फरमाते कि मैं हर रोज़ 5,000 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ। इमाम पर जो सलवात भेजी जाती है उसमें आपकी तौसीफ़ में कहा गया है, तवील सजदों और ज़्यादा आंसुओं वाले। तमाम आइम्माए ताहिरीन अलैहिस्सलाम अताते इलाही और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। सोचने का मकाम है कि कोई कैसे ये कह सकता है कि नमाज और नेक आमाल की ज़रूरत नहीं। इमाम अपने अजदाद पाकीज़ा की तरह नफ्स मुतमईना की मंजिल पर फ़ाइज़ थे। आपने मुसलसल कई बरस क़ैद खाने में बसर की और पूरी मुद्दत के दौरान इबादत इलाही में मशगूल रहे, यहाँ तक कि आपके क़ैद खानों के कई निगरान भी आपसे मुतासिर हुए और आपको शदीद सख्तियों के साथ क़ैद में रखने से गुरेज किया। जब हारून ने इमाम को गिरफ़्तार करके अपने गवर्नर ईसा इब्ने जाफ़र के सुपुर्द किया और उसने आपको क़ैद खाने में बंद कर दिया, तो उसके मुकर्रर करदा आदमियों ने सुना कि इमाम अल्लाह से यूं दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे दरख्वास्त करता था मुझको अपनी इबादत का मौका इनायत कर दे, जो तूने मुझे इस क़ैद खाने में लाकर अता कर दिया। तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शा। इमाम क़ैद खाने में तमाम रात जागते, इबादत तिलावत मुनाजात में मसरूफ़ रहते, दिन में अक्सर रोज़े से होते और महराब की सिम से अपना रुख पाक नहीं हटाते। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी कहते हैं कि आइम्माए ताहरीन अलैहिस्सलाम को खुदा का खौफ ऐसा था कि नाम इलाही ज़बान मुबारक पर आते ही या नाम इलाही सुनते ही उनका जिस्म कांप उठता था। यूँ महसूस होता गोया जन्नत और जहन्नुम को अपनी आँखों के सामने देख रही हूँ। आइम्माए ताहिरीन अलैहिस्सलाम गरीबों से मोहब्बत करते, उनके साथ हमदर्दी से पेश आते, गरीबों पे नवाओं की फौरी और हर तरह की मदद करते, मज़लूमों की मदद करने में उनका कोई सानी नहीं मिलता। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि आपकी खूबियों में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जा है वो आपकी सखावत और फयाजी थी। जो ज़रबुल मिसल बन गई। आपके पास हमेशा पैसों से भरी थैलियाँ रहा करती थीं। आप जिस किसी से मिलते या जो भी आपके करम का मुंतज़िर होता, आप इन थैलियों में से उसे अता फरमाते। आपको अज़ियत पहुँचाने वाले लोग भी आपकी सखावत से फैज़ पाते थे। जो आपको अज़ियत पहुँचाते, आप उन पर बख्शिशें करते। ये रिवायत इंसान को हैरत ज़दा कर देती है। इस बारे में ख़तीब बगदादी का ये कौल मिलता है कि वो इस कदर सखी और करीम थे कि जब उनको बताया जाता कि फ़लां शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, तो इमाम उसके पास 1,000 दीनार की थैली भिजवा देते। पैसों से भरी आपकी थैलियाँ मशहूर थीं। अबुल फरज असफहानी ने कहा कि जब हज़रत को ये ख़बर मिलती कि फ़लां शख्स परेशान और बदहाल है, तो आप उसके लिए दीनारों की थैली भेजते। तमाम लोगों की निस्बत आपका सिला रहम अपने अहलो आयाल और अरहाम के लिए ज़्यादा था। फ़ुकराए मदीना के लिए रात के वक्त अपनी पुश्ते मुबारक पर सामान, दिरहम, दीनार, आटा, खुरमा लेकर जाते, और मदीने के फ़कीरों को मालूम भी नहीं होता कि ये चीज़ें किसकी तरफ से हैं। आप करीम थे, हज़ार ग़ुलाम आज़ाद किए। और ख़तीब बगदादी ने कहा कि आप ऐसे कशादा दिल सखी थे कि हर वक्त 300-400 दीनार की थैलियाँ तैयार रखते और रात के वक्त उनको नादारों के घरों में डाल देते। इन्हीं पाकीज़ा आदात और इखलाक की बिना पर आपको लोगों में बे इंतहा महबूबियत हासिल थी। अय्याम हफ्ता में जो बुध का दिन है, वो इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस दिन की आपकी ज़्यारत है। और सातवीं सात दिन के हिस्सों को, जैसा कि हमने पहले भी बयान किया था कि दिन की जो सातें हैं उनमें से 12 सातों को 12 इमामों से मंसूब किया गया है, जिसमें सातवीं सात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सातवें इमाम से मंसूब है, जो जोहर से लेकर असर से पहले 4 रकत की अदायगी के वक्त तक है। इस वक्त की एक दुआ है, मफातिल जिनान में है, जिसमें अल्लाह की हम के बाद खुदा को इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर हाजत तलब की गई है। और मफातिल जिनान में जालिम जिन और इंस से बचाओ और उनसे हिफाजत के लिए हिजाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, और हिर्ज़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। इमाम की इल्मी काविशों को मुख्तसरन बयान करेंगे कि जिन सालों में इमाम अपने वालिद बुजुर्गवार के ज़ेर साया रहे, उस मुद्दत में आपने बनी उमैया का अहद हुकूमत देखा। और इमाम ने ये भी देखा कि मदीने के अतराफ व जवानिब से आए हुए उलमा और तालिब इल्म आपके वालिद बुजुर्गवार के हुजूर जमा हुआ करते थे, जिसमें ज़यीफ़ अफराद भी थे, जवान भी थे। और इन आने वालों में कुछ लोग तो वो थे जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस और दीगर इस्लामी उलूम हासिल करते। उनके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते जो इमाम से तौहीद, इमामत और दीगर मौजूआत पर मनाजरा करने आते। आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ दीन, इल्म, इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ थीं। इस राह में वो किसी दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं देते थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को कुछ ज़माना ऐसा मिल गया था कि आप दोनों के अहद इमामत में लोग इल्म हासिल करने आते रहे। पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने जामियाए अहले बैत की बुनियाद रखी, जिसमें उलमा और तलबा की तादाद 4,000 तक पहुँच गई। इमाम की शहादत के बाद ये ज़िम्मेदारी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर थी, और उनकी शहादत के बाद इमाम मूसा इब्ने जाफ़र ने अपने वालिद बुजुर्गवार के मंसूबे को आगे बढ़ाया और हौज़ा इल्मिया तश्कील दिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपका इल्मी मकतब मुअत्तल नहीं हुआ, बल्कि इमाम मूसा इब्ने जाफ़र की रहबरी में बरकरार रहा। मगर हुक्मरान कभी भी इन इल्मी कोशिशों के हक़ में नहीं थे। बहरहाल, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को इल्म व हिकमत के दकीक नुकात से आगाह फरमाते थे, यहाँ तक कि इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम इब्तिदाई शबाब ही में उलमा की तवज्जो का मरकज़ बन गए थे और आप मुख्तलिफ इल्मी मुश्किलात हल फरमाते रहे। अगरचे के इमाम की ज़िंदगी सख्त निगरानी और फिर कैदोबंद में गुजरी, फिर भी मुहद्दिसीन ने इमाम से फ़िक़्ह और दीगर दूसरे इस्लामी मौजूआत पर इससे कहीं ज़्यादा अहदीस रिवायत की हैं जितनी आपके बाद किसी और इमाम से की हों। गालबन इसकी वजह यह है कि इमाम को अपने वालिद बुजुर्गवार की ज़िंदगी में इतना वक्त मिल गया था जिसमें आप अपने असहाब और जामिया अहले बैत के तालिबे इल्मों की तवज्जा का मरकज़ बन गए थे। चुनाचे आपके वालिद बुजुर्गवार की वफ़ात के बाद सख्त हालात में भी लोगों को जब भी मौका मिलता, चाहे रात की तारीकी ही क्यों ना हो, वो इमाम से रुजू करते। उन हालात का तकाजा था कि तकिया इख्तियार किया जाए। तकिया का मानी यह है कि खुफिया तौर पर अपना और अपने नज़रिए का दिफा करना। आइम्माए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने तकिया की हालत में आला तरीन कारनामे अंजाम दिए और वक्त गुजरता चला गया, गुजर गया। मौर्रखीन ने लिख दिया कि आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हक पर थे। उनका हर काम अपने जद्दे अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीन दीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए था। और आज अहले बैत का दुश्मन मुसलमानों के नज़दीक काबिले नफरीन है। इमाम के असहाब में से 6 अफराद सिदक यानी सच्चाई और अमानत में मशहूर हो गए थे। सच्चाई और अमानत में उन्होंने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो रिवायात नकल की, रावियों ने उनके सही होने पर इत्तेफाक किया है। मुहद्दिसीन के दरमियान इन 3 इमामों यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के असहाब में से 18 अफराद बहुत मशहूर हैं और वो असहाब इजमा कहलाते हैं। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में सिर्फ शिया ही नहीं थे बल्कि तमाम इस्लामी फ़िरक़ों के लोग शामिल थे। बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो शिया अकायद के हामिल नहीं थे, लेकिन वो आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम से तफसीर, कुरान और हदीस का दर्स लेते थे। इमाम हौज़ा इल्मिया तश्कील देने के बाद शागिर्दों की तरबियत में मसरूफ़ हुए। सैयद इब्ने ताऊस लिखते हैं कि इमाम के ख़ास शिया और ख़ानदान बनी हाशिम के अफराद इमाम के गिर्द जमा होते और आपके कीमती अक़वाल और हाज़रीन को दिए जाने वाले सवालों के जवाब जो इमाम बयान फरमाते, ये लोग उन्हें महफूज कर लिया करते थे। उस ज़माने में भी इन्हराफात फैले हुए थे, बकसरत जाली अहादीस बनाई जाती थी, लोगों के मुख्तलिफ गिरोह होते, लोग तौहीद के हवाले से बहुत सी मुश्किलात और शुबहात का शिकार थे। उस ज़माने में तौहीद और सिफात खुदा की मबाहिस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। जाहिर है कि इमाम की रहनुमाइशियों को उस ज़माने में राइज तावीलात से निजात दिला सकती थी। एक रिवायत है कि इमाम ने खुदा की सिफात के बारे में फरमाया कि तौहीद के बारे में जो कुछ अल्लाह ने अपनी किताब यानी कुरान में बयान फरमाया है उससे आगे ना बढ़ो वरना हलाक हो जाओगे। और एक और रिवायत में इस तरह फरमाया कि अल्लाह इससे बालातर और बुलंदतर है कि कोई उसकी सिफात की हकीकत तक पहुंच सके, बस उसको उसी तरह पहचानो जिस तरह खुद उसने अपनी तौसीफ़ किया और इसके अलावा बातों से दस्तबरदार हो जाओ। जब इमाम खुद सिफात खुदा बयान करना चाहते तो सिर्फ़ कुरान के मजामीन से इस्तफादा करते। इमाम ने अहले हदीस की मुखालफत की और तशबीह के कायल थे। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ज़रूरी मवाक़े पर तहरीफात और जालसाजियों का जवाब दिया करते और इसी तरह बास मुतशाबे आयात और अहदीस की तफसीर में लोगों ने जो ज़ाहरी और आमियाना मफहूम अख्स किए हुए थे आप उनके गलत होने की निशानदही फरमाते। इमाम अपने असहाब को भी मजबूत करते थे ताकि वो लोगों के दरमियान अहले बैत के नुक्ता नज़र की नशर इशात करें, और ऐसे असहाब जो मनाजरे के मैदान में मजबूत थे, इमाम उन्हें मुखालफीन के साथ बहस और मनाजरे और शियों के अकायद बयान करने की तरगीब देते थे। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आइम्मा और उनके असहाब की कोशिशें इस बात का सबब बनी कि अहले बैत के अकायद ने शियों की फ़िक्री बुनियादों को तश्कील दिया और तहरीफ से महफूज इस्लाम अहले बैत के ज़रिए बाकी रहा। रावियों ने वो गुफ्तगू नकल की है कि जो एक मरतबा इमाम और अबू हनीफ़ा के दरमियान हुई थी, और अबू हनीफ़ा का एतराफ़ भी तहरीर किया गया है कि जो इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर उनकी ज़बान से निकला था। अबू हनीफा ने इमाम से सवाल किया, इमाम के जवाब की गहराई देखकर दूसरा सवाल पेश कर दिया जो मुश्किल तरीन मसाइल में से था, और उस ज़माने में फुकाहा के दरमियान उसके मुतालिक शदीद बहसें चल रही थीं। इमाम के जवाब सुनने के बाद अबू हनीफा ने कहा कि मैंने जो कुछ इमाम से सुना उससे मैं इतना सेर हो गया कि फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई सवाल पेश किए बगैर इस आयत की तिलावत करता हुआ रुख्सत हो गया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 34, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद इमाम की शोहरत इराक़, हिजाज़, तमाम मुस्लिम इलाकों में फैल गई थी। हर तरफ से उलमा और तलबा इमाम की खिदमत में आने लगे। किताब मनाकिब में ये रिवायत नकल की गई है कि अली इब्ने हमज़ा कहते हैं कि मैं अपने आका व मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर था। वहाँ कुछ ग़ुलाम आए जो आपके लिए यानी इमाम के लिए ख़रीदे गए थे। उनमें से एक ग़ुलाम ने अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू की और इमाम ने भी उसी लहजे और ज़बान में उसे जवाब दिया, तो ग़ुलाम हैरान रह गए क्योंकि उनका ख्याल था कि इमाम अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान नहीं समझते। अली इब्ने हमज़ा कहते हैं कि जब वो ग़ुलाम वहाँ से चले गए तो मैंने इमाम से अर्ज़ किया, फ़र्जंदे रसूल, मैंने देखा कि आपने उनके साथ उनकी ज़बान में गुफ्तगू की है। तो इमाम ने फरमाया, हाँ, क्या तुम इस चीज़ पर हैरान हुए कि मैंने उनके साथ हबशी ज़बान में गुफ्तगू की है? इमाम ने फरमाया, परेशान मत हो, क्योंकि हमारे बारे में तुम्हारे ऊपर जो कुछ पोशीदा है वो इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन है जो कुछ तुमने हमसे सुना है। ये ऐसे ही है जैसे परिंदा समंदर से अपनी चोंच में पानी उठाता है। क्या उस कतरे से जो परिंदे ने समंदर से उठाया है समंदर में कमी वाकई हो सकती है? इमाम समंदर की मानिंद हैं, जो कुछ उनके पास होता है उसकी कोई इंतहा नहीं। उनके हैरान कुन काम समंदर की हैरानगियों से कहीं ज़्यादा हैं। इसी तरह की एक और रिवायत इसी किताब में मिलती है कि इसहाक़ इब्ने अम्मार कहते हैं कि मैं इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, ऐसे में एक शख्स ने आने की इजाज़त चाही और उसने ऐसे लहजे में इमाम से गुफ्तगू की कि मैंने आज तक नहीं सुनी थी, और इमाम ने उसे उसी ज़बान में जवाब दिया। उसने अपने तमाम मसाइल इमाम से पूछे और वहाँ से चला गया। इमाम ने फरमाया इसहाक़ इब्ने अम्मार से कि मालूम हो रहा है कि तुमने उनके लहजे में मेरी गुफ्तगू से जो मेरी गुफ्तगू तुमने उनके लहजे में सुनी, तुम उससे हैरान और परेशान हुए हो। तो इसहाक़ इब्ने अम्मार ने कहा कि हैरानगी की तो बात है। इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा हैरान कुन बात की खबर देता हूँ। बेशक इमाम परिंदों और हर ज़ी रूह जिसे अल्लाह ने खल्क किया है सबकी ज़बान जानते हैं। इमाम पर कोई भी शय पोशीदा नहीं। अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा इब्ने जौज़ी ने एक रिवायत नकल की है जिसका मज़मून ये है कि एक मरतबा सफ़र हज के सफ़र के दौरान शफीक बलकी की इमाम से मुलाकात हुई और उसने कई बार इमाम से एक बात पूछने की कोशिश की और इमाम ने हर मरतबा एक आयत की तिलावत फरमा के उसके दिल में छुपी हुई बात को आश्कार कर दिया।